आप अपनी बेरुखी से उनकी बेटी को नहीं, अपनी पत्नी को तकलीफ पहुंचाते हैं, उसके दिल के टुकड़े करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस कदर टूट जाऊं कि बाद में आप चाहते हुए भी मुझे जोड़ ना सके, और खुद से दूर करते करते मुझे खुद से इतना दूर कर दे कि मैं दोबारा कभी आपके आसपास नज़र तक ना आ सकूं। पहले से टूटी हुई हूं मैं, अब अपनी कड़वी बातों से मुझे इतना भी मत तोड़िए कि मैं टूट कर बिखर जाऊं और फिर आप चाहकर भी मुझे समेट ना सके। ज़रूरत है मुझे अभी आपके प्यार की, मत तरसाइए मुझे अपने प्यार के लिए इतना कि कल को आप दोनों हाथों से मुझ पर प्यार लुटाना चाहे, पर प्यार महसूस करने के लिए मैं आपके पास ही ना रहूं। मत करिए बेवजह मेरे चेहरे से इतनी नफरत कि कल को इस चेहरे की एक झलक देखने के लिए आपकी आंखें तरस जाए, पर आपको ये चेहरा देखना नसीब ही ना हो। मैं तुम्हारा देखना ही नहीं चाहता। तुम्हारे मन में मुझे लेकर क्या है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं इतना जानता हूं कि मेरे दिल में कभी तुम्हारे लिए ना कुछ था, ना है और ना ही कभी होगा। मैं जब जब तुम्हें देखता हूं, मुझे तुम्हारे बाप का अक्ष नजर आता है तुम्हारे चेहरे में, और उस चेहरे से मैं नफरत करता हूं, बेइंतहा नफरत। फिर तुमसे प्यार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूं कि मेरी सिंपथी को प्यार करने की गलती कभी भूल से भी मत करना। मैं तुम्हारे लिए जो भी कर रहा हूं, उसके पीछे मेरा बस एक ही मकसद है, और वो है अमरजीत ठाकुर की बर्बादी। और जिस दिन मेरा ये मकसद पूरा हो जाएगा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी और अपने घर से निकालकर बाहर फेंक दूंगा। उसके बाद तुम कहाँ जाती हो, तुम्हारे साथ क्या होता है, इन सब बातों से मुझे कोई मतलब नहीं होगा। अपने प्यार और परवाह को आज फिर शान ने अपने गुस्से और नफरत के पीछे छुपा लिया, पर आज वो कुछ ज़्यादा ही कह गया, और उसकी बातें आरवी, जो पहले से टूटी हुई थी, उसे और ज़्यादा तोड़ गया। कहाँ आरवी ने आज भावनाओं में बहकर शान के लिए अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया था, इस उम्मीद से उसे देख रही थी कि शान उसकी भावनाओं को समझे। पर शान ने अपनी कड़वी बातों से एक झटके में उसके प्यार भरे दिल को तोड़कर चकनाचूर कर दिया, और कोई आवाज़ तक नहीं हुई। आरवी कुछ पल डबडबाई आंखों से उसको देखती रही, फिर बिना कुछ बोले मुंह फेरकर सिकुड़ कर लेट गई और बेआवाज़ रो पड़ी। आंखों से बहते आंसू तकिए को भिगोने लगे। शान जानता था कि वो रो रही थी, उसके आंसू उसको भी तकलीफ दे रहे थे, पर पहले ही भावनाओं में बहकर एक बात गलती करते करते बचा था। वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, इसीलिए चुपचाप रूम से बाहर चला गया। गेट के बंद होने की आवाज़ सुनकर आरवी अपने किस्मत पर फूट फूट कर रो पड़ी। जहां इस वक्त वो टूटी हुई थी और दरकार थी उसे शान के प्यार की, पर वहां से उसे मिली सिर्फ नफरत, और वो नफरत आज आरवी को तोड़ गई। आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ गया और दर्द आज हर सीमा पार कर गया। शान बेबस सा सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तभी उसको सामने से सर्वेंट आता नजर आया, जिसके हाथ में खाने की भरी ट्रे थी। शान वहीं खड़ा उसका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद सर्वेंट उसके पास पहुंच गया तो शान ने उसे ट्रे ले ली और उसको जाने को कह दिया। फिर खुद ने गहरी सांस छोड़ी और वापस अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। आरवी अब भी रो रही थी जब उसके कानों में दरवाजे के खुलने की आवाज़ पड़ी। आरवी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, यूं ही रोती रही। उस कमरे में उसकी सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी, जो शान के कानों में गर्म लोहे जैसे पिघल रही थी। उसके आंसू उसके सीने को छलनी कर रहे थे। जी चाह रहा था कि उसको अपने सीने से लगा ले, दुनिया की नज़रों से छुपा ले, उसके सारे दुख खत्म कर दे, पर खुद उसके दुखों की वजह बन चुका था। शान ने अपना दिल मजबूत किया और खाने की ट्रे को टेबल पर रखकर बेड के पास चलाया। कुछ पल आरवी को खामोशी से देखता रहा, फिर थोड़ा प्यार से बोला, उठो चलकर खाना खा लो। आरवी ने कुछ कहा और ना ही उठी, यूं ही पड़ी रोती रही। शान ने कुछ पल इंतजार किया, फिर सख्त लहजे में बोला, नाटक बंद करो अपना और उठकर चुपचाप खाना खाओ। याद रहे कि अगर तुम्हारी आंखों से एक आंसू भी अब और गिरा या तुमने मेरी बात नहीं मानी, खाना नहीं खाया, तो अभी और इसी वक्त तुम्हें इस घर से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। उसकी धमकी पर भी आरवी नहीं उठी। शान ने अपने बालों को हथेली से पकड़ते हुए सर ऊपर उठाया और गहरी गहरी सांसें छोड़ते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उसने बड़े ही प्यार से कहा, आरवी कुछ भी नहीं हुआ है, रोना बंद करो और उठकर खाना खा लो। अब भी आरवी पर कोई असर नहीं हुआ। शान हर तरह से उसको मनाने की कोशिश करके हार चुका था। गुस्सा भी आने लगा था, पर उससे कहीं गुना ज्यादा आरवी की फिक्र हो रही थी, जिसे वो दिखा भी नहीं पा रहा था। कुछ देर तक वो परेशान सा आरवी को देखता रहा, फिर कुछ सोचते हुए वापस रूम से बाहर चला गया। शान के जाते ही आरवी उठकर बैठ गई और अपनी हथेलियों से अपने आंसुओं को पोंछने के बाद बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद मुंह धोकर वापस बाहर आई। उसने खाने पर नजर तक नहीं डाली और चुपचाप वापस आकर बेड पर बैठ गई। क्राउन से सर टिकाए और आंखें बंद किए आज जो भी हुआ और शान ने जो भी कहा उसके बारे में सोचने लगी। रूम से बाहर निकलकर शान ने अपना फोन बाहर निकाला और रश्मि को फोन करने लगा, पर फिर वक्त देखकर रुक गया और छत पर चला गया। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। शान रेलिंग को पकड़े आंखें बंद करके खड़ा हो गया और ठंडी हवाओं को महसूस करने लगा, पर दिलो दिमाग में आज जो भी हुआ वही सब घूम रहा था। करीब 2 घंटे बीत गए उसको यूं ही खड़े खड़े। फिर वो वापस रूम में चला आया। हौले से दरवाजा खोलकर देखा तो आरवी बेड से टेक लगाए बैठी थी या शायद सो चुकी थी। शान ने खाना देखा तो जैसे छोड़कर गया था वैसे का वैसे ही पड़ा था। फिर उसने सर हिलाया और आरवी की तरफ बढ़ गया। उसके पास आकर उसने 2-3 बार आरवी को आवाज दी, पर रोने के बाद नींद अच्छी आती है और आरवी तो आज इतना रोई थी इसीलिए अब गहरी नींद में सो चुकी थी। शान ने आराम से उसको बेड पर लिटा दिया और ब्लैंकेट से कवर करने के बाद खुद भी वहीं बैठने लगा। उसकी हथेली आरवी के सर को सहलाने लगी। जाने कब उसकी आंख लगी उसको पता ही नहीं चला। अगली सुबह आरवी की आंख खुली तो खुद को रूम में अकेले ही पाया। कल का हादसा, उस पर शान की बातें एक बार फिर उसके दिलो दिमाग पर हावी होने लगी और वो खुद में सिमटी फपक कर रो पड़ी। इस बात से अनजान कि एक जोड़ी आंखें उसे ही देख रही थीं और उसका दर्द उसकी आंखों में नमी बनकर उतर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। ये कोई और नहीं बल्कि शान था जो आरवी के उठने से कुछ देर पहले ही जाग गया था और उठकर पूल साइड में चला आया था ताकि आरवी को इस बात का पता ना चले कि वो सारी रात उसके पास था। शान पूल साइड खड़ा रोती बिलखती आरवी को देख रहा था, जा उसकी हर ज्यादती सहकर भी कभी इस तरह नहीं टूटी थी, पर इस बार खाव उसके तन और मन दोनों पर लगे थे। कुछ जख्म विहान ने दिए तो कुछ शान दे गया अपनी कड़वी बातों से और उसके जख्म अब नासूर बन चुके थे। मन आहत था पर अपनी पीड़ा किसी से कह भी नहीं पा रही थी, इसीलिए कमजोर पड़ने लगी थी और उसको कमजोर पड़ते देखकर शान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कुछ पल यूं ही उसको देखता रहा, फिर उसने उस पर से अपनी निगाहें फेर ली और कुछ सोचते हुए रश्मि को फोन लगा दिया। बीती रात कौन सा तूफान आया चंद लोगों के अलावा कोई नहीं जान सका। आरवी कल किसी मुसीबत में पड़ी और अब किस हाल में है इस बात से पूरी तरह अनजान। जानवी अपने बेड पर उल्टी पड़ी हुई थी और फोन चला रही थी।
कुछ देर पहले ही मैसेज आया था कि आज से कुछ दिनों तक रिहर्सल बंद रहेगी, जिसकी वजह नहीं पता थी उसे, पर छुट्टी थी यही सोचकर वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अचानक ही उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर शांतनु मल्होत्रा नाम देखकर वो एकदम से हड़बड़ा गई और हाथ से फोन छूटकर बेड पर गिर गया, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाला और कॉल पिक करते हुए सधी हुई आवाज में बोली, हेलो, आज से 1 हफ्ते तक की छुट्टी मिली है ये तो जानती ही होगी, तो जितनी जल्दी हो सके मल्होत्रा हाउस पहुंचो। शान ने बिना लाग लपेट के सपाट लहजे में अपनी बात कह दी। वही उसकी बात सुनकर रश्मि की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने हैरानी से कहा, व्हाट, छुट्टी है तो मैं आपके घर क्यों आऊं? रश्मि, जितना कहा गया है सिर्फ उतना करो और जितनी जल्दी हो सके मल्होत्रा हाउस पहुंचो। शान ने आदत से मजबूर सख्त लहजे में उसको ऑर्डर दिया, जिसे सुनने के बाद रश्मि के भाव एक बार फिर बदल गए। उसने भी शान के ही लहजे में जवाब दिया, अगर आप चाहते हैं कि मैं वहां आऊं तो पहले मुझे वजह बताइए कि जब आज छुट्टी है तो क्यों बुला रहे हैं आप मुझे अपने घर, और ये अचानक छुट्टी किस खुशी में दी है आपने, जरा ये भी बताने का कष्ट करें, क्योंकि बिना वजह जाने तो मैं यहां से हिलने से रही। दोनों ही एक से बढ़कर एक थे और एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते थे। रश्मि के बोलने का लहजा देख शान की भौहें तन गईं, पर आरवी का ख्याल आते ही उसने अपनी मुट्ठियों को कसते हुए अपने गुस्से को संयमित करते हुए कहा, तुम्हारी दोस्त को जरूरत है तुम्हारी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता, और बेहतर होगा कि तुम भी आकर उससे कोई सवाल जवाब ना करो, बस उसको संभाल लो। इतना कहकर शान ने फोन काट दिया। आरवी के बारे में बात सुनकर रश्मि के चेहरे के भाव बदल से गए। बहुत से सवाल आए मन में जिन्हें पूछने के लिए वो हेलो हेलो करती रह गई, पर फोन कट चुका था। उसने गुस्से में अपने जबड़े भींचे, फिर शान को कोसते हुए जल्दी से बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ी। दूसरी तरफ शान ने कॉल कट करने के बाद गहरी सांस छोड़ी और रूम में जाने को हुआ, तभी उसकी नज़र अंदर रूम पर पड़ी और दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़े उसके हाथ हवा में ही रह गए। सामने नन्ही अंशु मम्मा मम्मा पुकारते हुए कमरे में घुस चुकी थी। रात को आरवी से नहीं मिली थी इसलिए उठते ही उसके पास दौड़ी चली आई। आरवी के कानों में जैसे ही अंशु की आवाज़ पड़ी उसने झट से अपने आंसुओं को पोंछ लिया और उठकर बैठ गई। अपनी उदासी और दर्द छुपाते हुए उसने लबों पर फीकी मुस्कान सजा ली और अंशु को देखते हुए अपनी बाहों को फैला दिया। अंशु आकर बेड पर चढ़ी और आरवी की गर्दन पर अपनी छोटी छोटी बाहों को लपेटते हुए उसके सीने से आ लगी। आरवी ने भी उसको अपनी बाहों में भरते हुए उसके चेहरे को चूम लिया। टू बी कंटिन्यूड, मिलते हैं अगले भाग में जल्दी ही।